तो आप जानना ये चाहते हैं कि महाराज जी ने जो समता विलास में लिखा है कि समता पर के पर आधारित जो नीति है वही ठीक नीति है, इसके उलट जो नीति है वो नाश का कारण है। इसको समझने के लिए प्रकृति और समता दोनों को समझना पड़ेगा। समता तो कहते हैं समतत्व को, उसका एक और नाम प्रचलित है इसको ब्रह्म कहते हैं, उसको आत्मा भी कहते हैं, उसको चेतन सत्ता भी कहते हैं, ये सब उसी के नाम है, या साधारण रूप में हम उसको ईश्वर भी कह देते हैं। और दूसरी चीज है प्रकृति, जो हमको खुली आंख से दिखाई पड़ती है, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जिसका हमको अनुभव होता है, जिसमें हमारी देह भी शामिल है, जिसमें हमारा मन भी शामिल है, ये सारी प्रकृति है। तो नीति दो ही आधार पर बन सकती है, या तो ईश्वर के ऊपर आधारित नीति जिसको समता नीति महाराज जी कह रहे हैं, या प्रकृति पर आधारित नीति जो आम संसारी जीवन व्यतीत करते हैं। इसका सिंपल सा विज्ञान जो है वो ये है, जो प्रकृति हमको दिखाई पड़ती है जिसमें मेरी देह भी शामिल है, इसका निर्माण पांच तत्व से हुआ है, जिसको सारे शास्त्रों में पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये पांच तत्वों से इसका निर्माण कहा जाता है, शरीर का भी और संसार का भी। शरीर और संसार ये दो अलग चीजें नहीं है, लेकिन हम ऐसा समझते हैं ये अलग है। तो हम लोग जो संसार में जीवन व्यतीत करते हैं, साइंटिस्ट जो खोज करता है, टेक्नोलॉजिस्ट जो उस साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को वस्तुओं में, आरामदायक वस्तुओं में उसको कन्वर्ट करता है, तो जितने भी उत्पादन हैं संसार में और जितना भी सांसारिक चलन है, ये सारा का सारा प्राकृतिक जीवन है, क्योंकि सारी प्रकृति का निर्माण पांच तत्व से हुआ है, इसीलिए पांच तत्व के जो गुण हैं उनको अध्यात्म में विकार करके कहा जाता है। जैसे कि जल का जो गुण है वो काम है, जिसको आम तौर पे हम कहते हैं सेक्सुअल डिजायर। अग्नि का गुण है क्रोध है, सब जानते हैं। तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये पांच तत्वों के पांच विकार हैं। विकार इसलिए हैं कि ये जीवन चलाते भी हैं और जीवन बिगाड़ते भी हैं। मान लिया एक कोई शत्रु आपके सामने खड़ा हुआ है, आपको नुकसान पहुंचाना है उसने, आप यदि नीति के नाते उसको डराने के लिए क्रोध करते हैं ताकि ये भाग जाए या डर जाए, डर कर विध्वंस ना करे, तो ये क्रोध का पॉजिटिव यूज हुआ। और हमारी जब डिजायर पूरी नहीं होती है तब उस समय भी हम क्रोध करते हैं, परिवार में भी क्रोध करते हैं, समाज में भी क्रोध करते हैं। तो डर के मारे या तो कोई मेरी बात मान लेता है या वो उल्टा मुझ पर भी क्रोधित हो जाता है, दोनों की लड़ाई हो जाती है, तो ये परिवार का विध्वंस है। तो क्रोध का राइट यूज भी है और क्रोध का रॉन्ग यूज भी है। तो इसी प्रकार के सारे जो विकार हैं ये, इससे प्रकृति चलती भी है और इसका विध्वंस भी होता है। तो जब मेरी वासना गहरी हो जाती है और वासना का गहरापन डिजायर्स के रूप में प्रकट होता है, विभिन्न प्रकार की इच्छाएं मेरे अंदर उत्पन्न होती है। मान लिया इसको लोभ विकार कह रहे हैं, पैसे का लोभ मेरे अंदर आ गया, तो मैं अच्छी तरह से जानता हूं परिवार चलाने के लिए, जीविका चलाने के लिए, जीवन चलाने के लिए पैसा चाहिए। पैसा कमाने में कोई मना भी नहीं करता, लेकिन हमसे अपेक्षा यह की जाती है कि हम सीधे रास्ते पर चलकर पैसा कमाएंगे, उससे परिवार का लालन पालन करेंगे, अपना जीवन चलाएंगे। लेकिन इस लक्ष्य से हम भटक जाते हैं, लोभ वृत्ति बढ़ती रहती है जैसे जैसे पैसा बढ़ता रहता है, और हम पैसा कमाना ही लक्ष्य बना लेते हैं। हमारा ये हाल हो जाता है, जिस परिवार को मैंने बसाया था उस परिवार के लिए मेरे पास टाइम भी नहीं बचता, जिस रोटी के लिए मैंने पैसा कमाया था वो रोटी खाने के लिए भी टाइम नहीं बचता मेरे पास। तो जो मेरा रोजाना का जीवन था पैसे के कारण वही सफर करने लगता है, और लोभ की कोई सीमा नहीं होती है। आप देखते हैं पेपर्स में पढ़ते हैं, मैं नाम तो किसी का नहीं लूंगा, हजारों करोड़ रुपया बैंक से लोन लेकर लोग देश छोड़कर भाग जाते हैं। इनको किस चीज की कमी है? खाने की कमी है, पहनने की कमी है, सुख सुविधाओं की कमी है, लेकिन नहीं, सारी सीमाएं लांघकर उनकी बुद्धि इतनी अंधी हो जाती है, इनको होश ही नहीं आता हम कर क्या रहे हैं। मान लिया बैंक का पैसा लेके भाग रहे हैं, तो बैंक का पैसा है किसका? ये आम पब्लिक का ही पैसा तो है, ये जो टैक्स पेयर्स हैं उन्हीं का पैसा तो बैंक में जमा है, उसका संचालन सरकार करती है, बस ये है, उसकी एक व्यवस्था बनी हुई है। नहीं कोई उसको लेकर भाग जाए अपने स्वार्थ के लिए तो ये महापाप है या नहीं है? जो करने वाला है ये पाप, वो जानता है ये गलत है लेकिन फिर भी करता है। क्यों करता है भाई? इसलिए करता है कि लोभ के वशीभूत है, वो विकार के वशीभूत है, और जैसे जैसे इस विकार को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगा, अर्थात इस विकार के वशीभूत होकर पैसा ज्यादा कमाने की कोशिश करेगा, वैसे ही वैसे ये विकार उसका बढ़ता चला जाएगा, ये उसको नहीं पता। ये बात अध्यात्म में पता लगती है जब इसकी पढ़ाई करते हैं। तो इसीलिए संतों की वाणी कह रही है कि दो हाथ उलीचिए घर में बाढ़ है दाम, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। कोई अतिथि आ गया उसको भी भोजन मिल जाए, उसका भी गुजारा हो जाए और मेरा भी गुजारा हो जाए। तो पैसे का उपयोग तो मात्र इतना था कि गुजरान वाली जिंदगी आराम से बीत जाए, ये पैसे का सदुपयोग था, और किसी की दीन दुखी की सेवा हो जाए। क्योंकि संसार में भी पढ़ाया ही नहीं गया कि लोभ विकार होता है और इससे जिंदगी बर्बाद हो जाती है, तो मैंने पैसा कमाना सीख लिया, इकट्ठा करना सीख लिया, उस पर संयम करना नहीं सीखा मैंने। महाजी कहते हैं प्रेमी पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, कितना कमाया जाए ये होश होना चाहिए। तो दुनिया में तो पैसे के अंबार हैं, और हम पूरा इतिहास उठा के देख लें दुनिया का कि जिस देश ने पैसा खूब कमाया, दूसरे देशों पर राज किया, उनका शोषण किया, अपने देश में पैसा बढ़ा लिया, साजो सामान बढ़ा लिए, उस देश के लोगों की, वहां के राजनेताओं की, वहां के लीडर्स की बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई कि उन्हीं की भ्रष्ट बुद्धि के कारण विश्व युद्ध हो गए। एक व्यक्ति का लोभ, एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा पूरी दुनिया के अंदर युद्ध पैदा कर सकती है, जैसे कि हिटलर का शासन हमने देखा। इतिहास भरा पड़ा हुआ है ऐसे उदाहरणों से। हिंदुस्तान में भी आपने मुगलों का शासन देखा, अंग्रेजों का भी शासन देखा, कितना शोषण इन्होंने हिंदुस्तान का किया, ऐसा लग रहा था जैसे कल्चर ही बदल कर रख दियो। आज जो संसार में या यूं कहिए भारत में जो भोगवादी युग पदार्पण कर चुका है, जिसका प्रवेश हो चुका है, ये उन्हीं लोगों की देन है। तो इस भोगवाद का भारत के जीवन पर पॉजिटिव इफेक्ट होगा या नेगेटिव इफेक्ट होगा, ये विचार करने की बात है। ये विचार से पता लगेगा आपको। हिंदुस्तान के अंदर आज पैसा बढ़ रहा है, लोगों की शिक्षा बढ़ रही है, बाहरी रूप में देखो धर्म भी बड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हर जगह मंदिर नजर आ जाएंगे, हर जगह मस्जिदें नजर आ जाएंगी, जगह जगह गुरुद्वारे नजर आ जाएंगे, जगह जगह चर्च नजर आ जाएंगे। लेकिन जो वास्तविक धर्म है उसका पतन हो रहा है। जितनी शिक्षा बढ़ रही है उतनी मनुष्य की चालाकी बढ़ती चली आ रही है, बेईमानी करने के नए नए साधन वो तलाश कर रहा है। तो हो क्या रहा है? जो प्रकृति मेरे शरीर को बचा रही है, जिस शरीर को जीवन दे रही है, शरीर की रक्षा कर रही है, उस प्रकृति का सर्वनाश हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है। मेरे भोगवाद के कारण, मेरे देश के भोगवादी जीवन के कारण पूरे देश की कल्चर भी खराब हो रही है, पूरे देश का वातावरण भी खराब हो रहा है, पूरे देश की नेचर भी खराब हो रही है, मतलब कि पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है। और आज सारे के सारे साइंटिस्ट ये फील करने लगे हैं यदि ये भोगवाद इसी प्रकार बढ़ता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि पानी भी पीने लायक नहीं रहेगा, हवा श्वास लेने लायक नहीं रहेगी, और आदमी इतना भोगवादी हो जाएगा, इतना चालाक और मक्कार हो जाएगा, स्वार्थी हो जाएगा कि एक दूसरे से संबंध रखने लायक लोग नहीं रह जाएंगे। परिवार में ही एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, पड़ोस में एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। महाजी कहते हैं प्रेमी ये जो भोगवाद है इसको रजोगुण कहते हैं, और रजोगुण जब बढ़ता है ये ऑटोमेटिकली तमोगुण में बदल जाता है। तमोगुण से कहते हैं जब बुद्धि अंधी हो जाती है, उसको उचित अनुचित का होश ही नहीं रहता। ऐसी स्थिति में जब समाज पहुंचता है तो एक दूसरे का हक हासिल करने के लिए आपस में ही कटने मरने लगते हैं। यही होता है जहां से अध्यात्म हट जाता है, जिस व्यक्ति के जीवन से, जिस गृहस्थ के जीवन से और जिस समाज के जीवन से यह आध्यात्मिक विचारधारा हट जाती है, उसका सर्वनाश होना ही होना है। दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। इसीलिए जो भी सत्पुरुष धरती पर आता है वो चेतावनी देकर जाता है कि भोगवाद से परहेज करो, जीवन मर्यादा में जीने की कोशिश करो। नकल करके संसार की चकाचौंध देकर तुम फैशन परस्ती मत करो, अंधाधुंध कमाई मत करो। वो कहते हैं सीमा में काम करो, और सीमा के अंदर जो है रहते हुए अपना गुजारा करो, और प्रभु भक्ति के लिए भी कोई सीमा निर्धारित करो। वो है एक मेरा बैलेंस्ड जीवन। तो इसीलिए जो प्राकृतिक जीवन है, जिसकी बात जिसका इंडिकेशन महाराज जी समता विलास में कर रहे हैं कि समता के बगैर जो नीति बनती है वो कभी भी सफल नहीं हो सकती, वो समाज का देश का नाश करती है। तो वो क्या मतलब हुआ? केवल यदि हमारा प्राकृतिक जीवन है, प्रकृति से प्रेरित जीवन है, ईश्वर से प्रेरित जीवन नहीं है या गुरु से प्रेरित जीवन नहीं है, तो फिर क्या होगा कि मेरी देह की रचना पांच तत्व से हुई है, संसार की रचना पांच तत्व से हुई है, और ये पांच तत्व के पांच विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो ये मेरा जो सांसारिक जीवन है, चाहे कितना मैं क्वालिफाइड क्यों नहीं हूं, चाहे कितनी बड़ी से बढ़िया मेरी इनकम क्यों नहीं है, चाहे कितना भी अच्छा मेरा परिवार क्यों नहीं है, चाहे कितना भी अच्छा मेरा देश क्यों नहीं है, सब कुछ अच्छा मिलने के बाद भी जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ेगी आपके मन के अंदर ये भोगों की अग्नि बढ़ती चली जाएगी। प्राकृतिक जीवन है आपका, ये काम ऑटोमेटिकली होगा। तो इसीलिए महाजी कह रहे हैं प्रेमी समता के बगैर जो नीति होती है वो संसार को तबाह कर देती है, नष्ट कर देती है, बिगाड़ देती है। तो फिर समता नीति क्या हुई है? समता नीति समझने के लिए अपने शरीर की एक सूक्ष्म चीज भी समझनी पड़ेगी। मेरी देह तो है ये, लेकिन मैं जरा थोड़ा सा विचार करके देखूं, इस देह का इस्तेमाल मैं क्यों करता हूं, या इस देह का इस्तेमाल मैं कब करता हूं? मेरे मन में एक इच्छा उठती है, चाहे सवेरे जागते ही उठे, चाहे किसी भी वक्त उठे, जो आपके मन में इच्छा उठती है उस इच्छा की पूर्ति के लिए आप इस देह का इस्तेमाल करते हो। मन में इच्छा उठी कि टहलने से स्वास्थ्य ठीक रहेगा, तो आप उठते हो, तैयारी करते हो और देह को टहलने में लगा देते हो। और जो कार्य जब पूर्ण हो जाता है आपका, तो मन में एक संतोष होता है कि चलो एक काम हो गया। इसी प्रकार कोई खाने की इच्छा उठी है मन के अंदर, तो आप खाने की चीज इकट्ठी करने में मार्केट से लाओगे, या घर बनवाओगे, या उसके लिए सामग्री लाओगे, उसके सारी जो है व्यवस्था करोगे, और इस देह के द्वारा कर्म करके वो खाने की चीज तैयार करोगे, फिर उसका सेवन करोगे। तो ये सारी जो प्रक्रिया देह की चली, इसके पीछे आपके मन की डिजायर ही तो है। और जब वो प्रक्रिया आपके मन अनुकूल हो गई तो आपको संतोष होता है, और मन के अनुकूल नहीं हुई तो एक बेचैनी सी रहती है, अरे इतनी मेहनत भी की मजा नहीं आया, मन संतुष्ट नहीं हुआ, बेचैनी फिर भी कायम रहती है। आप तो चैन मिलना या बेचैनी मिलना, इसका संबंध देह से नहीं है, इसका संबंध मन के साथ है, क्योंकि डिजायर मन में उठी है, और उस डिजायर की पूर्णता या अपूर्णता में मुझको चैन मिल रहा है या मुझको बेचैनी मिल रही है। तो सत्य यह है मेरे बारे में, ना देह बेचैन होती है ना मन बेचैन होता है, देह और मन के कारण मैं बेचैन होता हूं। मैं कहता हूं ना, मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए, और नहीं होती है तो मुझको कितनी बेचैनी होती है। और आप देह से कितना प्रेम करते हो सब जानते हैं, हर व्यक्ति को अपनी देह कितनी प्रिय होती है, लेकिन आपने सोसाइटी में ऐसे बड़े केसेस देखे होंगे। मान लिया, एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसी के घर में माता पिता का एक बड़ा प्रिय बेटा है, उसका किसी लड़की से लव हो गया, उसके अंदर एक इंटेंस डिजायर जागृत हो गई कि मैंने इससे शादी करनी है, और हर एंगल से सोच लिया इसके बिना जिंदगी मेरी कुछ भी नहीं है। ऐसे आम केसेस से मिलते हैं समाज में देखने को। आप अब या तो सोसाइटी तैयार नहीं है या माता पिता तैयार नहीं है। जैसे कि हिंदू परिवार है, मुस्लिम लड़की है, तो उसके घर वाले तैयार नहीं होते, कहता है गैर धर्म के लोग हैं, मैं तो शादी नहीं करेंगे। कोई भी कारण बन जाए, शादी दोनों की नहीं होती है, तो लड़का बिना उसके रह भी नहीं पाता है, तो कहता है इस जीवन में इस जीने का क्या फायदा है, निरर्थक जीवन है, जब मन की खुशी ही कोई नहीं है तो काहे के लिए जीना, वो सुसाइड कर लेता है। तो बताइए, इतनी प्रिय देह, देह तो बेचैन नहीं है, और डिजायर मन के अंदर है, मन भी परेशान नहीं हो रहा है, परेशान मैं हो रहा हूं, अपने बारे में मुझे कोई होश नहीं है, मैं अपना एनालिसिस भी नहीं कर सकता, किसी ने सिखाया ही नहीं मुझे। जिस देह को नष्ट करने जा रहा हूं, मैं अपने आप को देह ही समझ रहा हूं, जो मात्र एक इक्विपमेंट है डिजायर पूरी करने के लिए। मैं अपने बारे में ABCD भी नहीं जानता, क्योंकि संसार में यह विज्ञान ही नहीं है, कोई क्या सिखाएगा आपको। यह विज्ञान तो गुरुओं के पास है, यह विज्ञान तो शास्त्रों में, अब गीता में विज्ञान है ये। अब गीता पढ़ने वाले मुझे बहुत मिले, लेकिन यह विज्ञान मैंने आज तक किसी से सुना नहीं। वहां साफ लिखा हुआ है, इंद्रियाणि पराणि आहु, इंद्रियेभ्यः परम मनः, मनसः तु परा बुद्धि या बुद्धे परतातुसः। कि देह से सूक्ष्म इंद्रियां हैं, क्योंकि मनुष्य देह का उपयोग इंद्रियों के भोगों के लिए करता है। देखने की इच्छा होगी तो आंख का मैं उपयोग करूंगा और देखकर खुश होऊंगा। इंद्रियां सूक्ष्म है, तो परे वर्ण जो है अध्यात्म में सूक्ष्म के लिए उपयोग होता है। इंद्रियां देह के मुकाबले में सूक्ष्म है, इसीलिए देह जला दी जाए इंद्रियां नहीं जलती। जैसे कि मान लिया देखने की इंद्रिय है, आंख से देख रहा हूं, आम व्यक्ति तो यही समझेगा कि ये जो बाहर से दिख रही है ये आंख है। लेकिन आपने ऐसे लोग भी देखेंगे जो कलर ब्लाइंड होते हैं, ऐसे लोग भी देखेंगे जो आंख बिल्कुल इंटैक्ट है उनकी लेकिन देख नहीं सकते, अंधे हैं वो। तो डॉक्टर को दिखाओ तो डॉक्टर कहता है भाई ब्रेन से जो ऑप्टिक नर्व आ रही है वो इसकी फेल हो गई है, इसलिए ये देख नहीं सकता। तो किस वहम में जीते हम, आंख को इंद्रिय समझ रहे हैं, ये इंद्रिय है नहीं, इंद्रिय कुछ और है। और अध्यात्म में ऑप्टिक नर्व से भी सूक्ष्म इंद्रिय अध्यात्म, वो कहते हैं इंद्रिय का निवास मन के अंतर्गत होता है। अब कहोगे ये हमें कैसे पता लगा ये इंद्रियां मन में रहती हैं? तो देखो रात को सोते हो तो रात में स्वप्न देखते हो, तो जागने के बाद आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे वो तो एक मन का संकल्प था, मन के संकल्प ने स्वप्न तैयार कर लिया, वो तो झूठा था, ये असली संसार है जो दिखाई पड़ रहा है, ये असली है वो नकली था। जरा विचार करो कि स्वप्न में भी तुमने अपनी आंख से देखा था या दूसरे की आंख से देखा था? कहोगे देखा तो मैंने अपनी आंख से था, वो आंख कहां से आ गई वहां पर, आंख तो तुम्हारी एक ही है ना। तो इसका मतलब जिस समय मैं सोता हूं नींद मेरी कच्ची होती है, अभी गहरी नींद नहीं हुई है, तो क्या होता है मेरी इंद्रियां मन के अंदर प्रवेश कर जाती हैं और मन संकल्प के द्वारा संसार की रचना कर लेता है। जो स्वप्न जगत में देखता हूं लोगों का भी, लोग भी पैदा हो जाते हैं वहां पर, मैं भी पैदा हो जाता हूं और संसार भी ऐसा ही पैदा हो जाता है। उसका मैं भोग विलास भी करता हूं, उसका सुख दुख भी मैं ग्रहण करता हूं। तो इंद्रियां मेरी ही हैं। आपका मन कोई देख सकता है जरा? कहोगे भाई देखने की तो आंखें चाहिए, आंख बंद कर लो मन देख लेगा? नहीं देख सकता। तो मन यदि देखेगा तो इंद्रियों की मदद से ही देखेगा वो। तो स्वप्न की रचना में भी मैं देख रहा हूं और उस दृश्य का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ रहा है और मैं अपने ही मन अपने ही इंद्रियों का इस्तेमाल भी कर रहा हूं, लेकिन मुझे इस विज्ञान का पता नहीं है क्योंकि मुझे किसी ने सिखाया नहीं। तब गीता कह रही है कि इंद्रियाणि पराणि आहुः, इंद्रियेभ्यः परम मनः, इंद्रियों से भी सूक्ष्म और श्रेष्ठ मन है। श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि मन के कारण इंद्रियां काम कर रही ना, मन के डिजायर होगी तब देखोगे, मन के अंदर डिजायर होगी तब जीभ से स्वाद लोगे आप। तो मन श्रेष्ठ हुआ या इंद्रिया श्रेष्ठ हुआ? तो मन के अंदर इच्छाओं का मनन चलता है, संकल्प विकल्प उठते हैं, सुख दुख के संकल्प उठते हैं। कहते हैं मनासु परा बुद्धि, मन से परे बुद्धि है। बुद्धि कौन है? ये मन के संकल्प को देखने वाली या मन के संकल्प को समझने वाली जो सत्ता है उसका नाम बुद्धि है। और मैं बड़े साधारण शब्दों में कहता हूं, मैं कहूं यदि आप आंख बंद कर लो दो मिनट के लिए, बताओ मन में क्या विचार उठा, क्या संकल्प उठा, आप फट से बता दोगे मेरे मन में ये विचार उठा था, मुझे तुरंत जो है घर की याद आई थी, घर का दृश्य याद आया था। तो भाई मन के संकल्प को देखने वाला कौन हुआ? शरीर है क्या? जरा विचार करके बताओ, मन के संकल्प को देखने वाला क्या शरीर है या मैं हूं? मैं ये तो कहता हूं शरीर मेरा है, मन मेरा है, इंद्रियां मेरी हैं, विचार मेरा है, सब कुछ मेरा है। ये कभी नहीं सोचा कि मैं कौन हूं, ये कभी नहीं सोचा। ठीक है मैं मालिक हूं इन सबका, मैं इन सबका उपयोग करता हूं, केवल उपयोग नहीं करता हूं, मैं इन सबके कारण मजबूर भी हूं देह रोगी हो गई तो मैं देह के कारण दुख उठाने के लिए मजबूर हूं या नहीं हूं, या मालिक हूं देह का? मन के अंदर बेचैनी आ गई, बेचैनी के संकल्प आ गए, भय के संकल्प आ गए किसी भी कारण से, तो मैं परेशान होऊंगा नहीं होऊंगा? मेरा कंट्रोल है इसके ऊपर। तो मैं जिसके कारण एंजॉय कर रहा हूं उसी के कारण मजबूर भी, उसके कारण कष्ट भी उठा रहा हूं। तो इस मन का पता मुझको है, इसका ज्ञान मुझको है। तो मन की सत्ता को, मन के संकल्प को जो जानने वाली सत्ता है उसको बुद्धि कहते हैं। इसी का नाम समता विलास में जीव रखा गया है, इसको जीव भी कहते हैं। तो जीव अपने ही मन, अपने ही तन, अपने ही इंद्रियों के कारण परेशान होता है। परिवार के रूप में, संसार के रूप में जो रचना बनाई है, उसने इकट्ठी की है, उसके कारण परेशान होता है, अपनी ही रचना के कारण। तो ऐसा जीव जब ज्यादा परेशान हो जाता है और संसार में कोई रास्ता नजर नहीं आता, तब वो ईश्वर को याद करता है। अभी पता कुछ नहीं ईश्वर क्या है इसको, लेकिन याद करता है ईश्वर को, अनजाने ही याद करता है। कहता है प्रभु मेरे बस की तो नहीं रही, अब तुम ही कोई कृपा करो, ये बाधा मेरे जीवन की दूर करो। तो वाणी कह रही है कि दुखी जीव की सुन पुकार, सतगुरु आए जगत उद्धार। अब देखो वाणी गाइड कर रही है, ऐसे दुखी जीव की पुकार सुनकर, वो प्रभु है ना, वो गुरु रूप धारण करके धरती पर प्रकट होते हैं। अब ये प्रभु हैं जिसका मुझे बोध नहीं है। हम कह भी दें प्रभु अंदर मौजूद है, मुझे विश्वास ही नहीं होता प्रभु कैसे अंदर मौजूद है। जब मैं ही अंदर मौजूद नहीं हूं, मैं तो अपने आप को देह समझ रहा हूं, तो प्रभु अंदर कहां से आ गए? पहले तुमको ये बोध होगा कि मैं अंदर हूं और मेरा मालिक जो प्रभु है वो भी अंदर ही है। तो इसीलिए गीता गाइड कर रही है, मन साहतु परा बुद्धि, मन से, मन के ऊपर बुद्धि है या मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, या बुद्धे परता तुसा, उस बुद्धि से भी श्रेष्ठ और सूक्ष्म वो आत्मा स्वयं है या ईश्वर है। अब ये सारा सिक्वेंस आपकी बॉडी का है, सबसे स्थूल जो दिखाई पड़ रहा है मोटा ताजा ये देह है पांच तत्व की, इससे सूक्ष्म इंद्रिया है जिसके कारण देह फंक्शन करती है, और इंद्रियों से सूक्ष्म मन है जिसके कारण इंद्रिया फंक्शन करती हैं, और मन से सूक्ष्म मैं स्वयं हूं जिसके कारण मन काम करता है या मन का निर्णय एक्सेप्ट होता है या रिजेक्ट होता है, और मुझसे भी सूक्ष्म, मुझसे भी श्रेष्ठ वो परमेश्वर, वो ईश्वर स्वयं है। महाजी कहते हैं प्रेमी तुझे अपनी करनी तो नजर आती है, ईश्वर की करनी तुझको नजर नहीं आती। इतना अहंकारी है कि ईश्वर के बिना तू एक श्वास भी नहीं ले सकता, तेरे जीवन का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, लेकिन अहंकार तो ये इतना है कि जो करा है मैंने ही करा है, ईश्वर ने कुछ नहीं करा है। माई कहते प्रेमी तूने सोचा नहीं कभी, तेरे जिस्म के अंदर जो जान है, तेरा जिस्म उसके कारण चल रहा है ना, या तू चला रहा है? तू तो सो जाता है, दिल तेरा धड़क रहा है, श्वास तुझको आ रही है जा रही है, तू क्या कर रहा है? खाना तूने चार गज से पेट में डाल लिया, हजम वही कर रहा है। तेरी करनी कितनी सी और उसकी करनी क्या है, जरा विचार करके तो देख, कितना अहंकारी है तू, और उसकी करनी का होश ही तुझको नहीं है। तो महाजी कहते हैं प्रेमी इस जिस्म के अंदर जो जान है उसका नाम ही परमात्मा है, और केवल जान ही नहीं है, वो जानने वाली सत्ता भी है। जिस प्रकार मैं मन के बारे में हर चीज जानने वाली सत्ता हूं, मेरा नाम बुद्धि है या मेरा नाम जीव है, तो बताइए मैं अपने मन के बारे में सबको जानता हूं नहीं जानता हूं? और यदि यहां गुरु बैठा हो तो क्या होगा? मैं पूछूं मैं क्या सोच रहा हूं, गुरु बता देगा, और सबके बारे में बता देगा कौन क्या क्या सोच रहा है। तो अपने मन के पीछे तो मैं अकेला हूं, लेकिन सबके मन के पीछे वही ईश्वर है, वही चेतन सत्ता है, और वही गुरु रूप में सामने बैठा हुआ है। इसलिए वो देह नहीं है, उसकी लिमिटेशन कोई भी नहीं है, वो अनलिमिटेड सोल है। तो इसीलिए उसका शिष्य चाहे अमेरिका में बैठा हो चाहे इंग्लैंड में बैठा हो, वो यहां बैठे बैठे बता देगा कि वो क्या सोच रहा है, उसके मन की बात वो यहीं बैठे बैठे बता देगा वो क्या सोच रहा है। तो अब बताइए मुझे कि उस ईश्वर की एग्जिस्टेंस है, ये गुरु का जीवन बताएगा आपको। महाराज जी की जीवनी पढ़कर देख लीजिए मेरे गुरुदेव, ध्यान से पढ़िए उसको, ये सारा ज्ञान दिमाग में रखते हुए आपको पता लग जाएगा कि ये मनुष्य का जीवन हो ही नहीं सकता। जो पूरे साल में एक या दो घूंट पानी पिए, वो भी कभी शरीर में रोग हो तो क्या वो जीवित रह सकता है? जो रात में सोई ना, बीसों वर्ष रात में एक मिनट की नींद ही ना ले, क्या वो जीवित रह सकता है? जिसने अन्न का भी त्याग कर दिया हो, एक वक्त बीसों वर्ष तक महाजी एक वक्त चाय लेते रहे, क्या उससे गुजारा हो सकता है? इस देह का गुजारा हो सकता है? जिसकी एजुकेशन आठवीं क्लास पास हो और समता विलास शास्त्र उसने लिखा हो और वाणी और मंत्र जिसके द्वारा प्रकट हुआ हो संत प्रकाश ग्रंथ के रूप में, क्या आठवीं क्लास पास विद्यार्थी बिना पढ़े लिखे शास्त्रों का अध्ययन किए हुए ये ज्ञान प्रकट कर सकता है? ये असंभव कार्य है, ये हो ही नहीं सकते। तो सत्पुरुष का जीवन, सत्पुरुष की करनी ये सिद्ध करती है कि ईश्वर है। मेरे अंदर बुद्धि कार्य कर रही है या जीव सत्ता कार्य कर रही है, लेकिन उस देह के अंदर ईश्वर सत्ता डायरेक्ट कार्य कर रही है। इन इंद्रियों का, इस मन का, इस देह का उपयोग मैं कर रहा हूं, लेकिन उन इंद्रियों का, उस देह का, उस मन का जो उपयोग है वो ईश्वर कर रहा है। मुझ में और गुरु में यह भेद है बस। इसलिए उसके द्वारा जो बात प्रकट होगी, जो नीति प्रकट होगी, वो अटल नीति होगी। उस नीति पे सारा संसार चल सकता है, और यदि चलेगा तो इस संसार का उत्थान होगा, संसार के लोगों के मन की शांति बढ़ेगी, उनका विकास होगा। और यदि जो एजुकेशनिस्ट हैं, सो कॉल्ड एजुकेशनिस्ट, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो लीडर्स हैं, जो पब्लिक है, जो संसार की बनाई हुई नीति पर चलेगी, उसका सर्वनाश होना ही होना है, कोई रोक नहीं सकता उसको, कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि उनको पता नहीं है इस बात का कि ये जो नीति है, ये जो जीवन है, ये पांच विकार से ग्रसित जीवन है। जितनी भी आप कमाई कर रहे हो संसार में ज्यादा, जितना भी विकास आप ज्यादा कर रहे हो, जितना आप लोभ ज्यादा कर रहे हो या चीजें इकट्ठी ज्यादा कर रहे हो, ये पांच विकार की वृद्धि आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में, आपके देश के जीवन में कर रहे हैं। और वो पांच विकार हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन पांचों के चक्कर में आदमी दूसरे का मर्डर तक कर देता है। एक देश के साथ दूसरे देश की लड़ाई इसी कारण से होती है। चाइना देश देख लो, कोई जमीन की कमी है उसके पास? काम करने वालों की कमी है क्या उसके पास? रॉ मटेरियल की कमी है उसके पास क्या? लेकिन संतोष कहां है? इतना बड़ा देश जिसके बॉर्डर देखो कितने लंबे चौड़े हैं, वो समुद्र पे ही कब्जा करना चाहता है। जिस समुद्र के चारों ओर दसियों देश हैं, उसकी फिक्र नहीं है उसको इनके जीवन का क्या होगा? इनका जीवन भी तो इसी पानी पर निर्भर कर रहा है। लेकिन नहीं, मुझको इस समुद्र का मालिक होना चाहिए। इंटरनेशनल कोर्ट का भी डिसीजन आ गया कि तू गलत कर रहा है, मैं तो नहीं मानता, मेरे पास ताकत है, मैं तो इस समुद्र पर कब्जा करके ही रहूंगा। क्या हुआ भाई इस बुद्धि को? ये एक देश की बुद्धि नहीं है, ये एक व्यक्ति की बुद्धि है, ये मेरी बुद्धि है। इसको सांसारिक बुद्धि कहते हैं, इसको सांसारिक जीव कहते हैं। तो यदि मैंने संसार में विकास किया है तो मेरा यही अश्व होना है, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। क्योंकि ईश्वर का सिद्धांत गलत नहीं हो सकता, प्रकृति का जो सिद्धांत है वो अटल है, वहां तो अटल है कि इन पांच विकारों युक्त या पांच तत्व से ग्रसित जिसका जीवन होगा, अर्थात देहधारी जिसका जीवन होगा, देह पर आधारित जिसका जीवन होगा, कि देह ही सब कुछ है, देह के भोग ही सब कुछ है, जिसने ये सीखा है उसका नाश होगा ही, दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। इसलिए महाजी कहते हैं, प्रेमी यदि बुद्धि में होश है तो सत्पुरुषों की जो नीति है उसी को समता नीति कहते हैं, उस नीति पर चलना सीखो। उसके लिए महाजी समता विलास में लिखते हैं, प्रेमी समय सीमा बांधकर संसार के काम भी करो, जिसको स्वार्थ कर्म कहते हैं, और परमार्थ का मार्ग भी तय करो। तो संसार में इंद्रियों का सुख भोगने के लिए नहीं आया है, ईश्वर का अनुभव करने के लिए आया है। क्योंकि पांच विकार युक्त जीवन में क्षणिक सुख दिखाई पड़ता है, इसलिए गीता में लिखा गया कि भोग काल में, या यूं कहते हैं कि साधना काल में, दो काल बताए उन्होंने। वो कहते हैं कि जो संसार के भोग हैं, भोगने के काल में ये भोग अमृत के समान दिखाई पड़ते हैं, परंतु परिणाम में ये विष के समान है। और साधना के लिए गीता में क्या लिखा, साधना काल में साधना विष के समान प्रतीत होती है, कि मुझे बैठना पड़ेगा, सिमरन करना पड़ेगा, आहार सादा करना पड़ेगा, फैशन नहीं करने को नहीं मिलेगा, ऐसी बातें विष समान लगती हैं भोगवादी जीवन वाले को। तो कहते हैं वो गीता में कि साधना काल में ये मार्ग जो है विष के समान प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में ये अमृत के समान है। और समता विलास भी महाराजी लिख रहे हैं, ये संसार देखने में सुखदायी प्रतीत होता है, परंतु अंदर से ये विष रूप है, जिन भोगा सो अंत पछताना, वाणी ये कह रही है। जिसने संसार का भोग किया, इसके लिए जीवन जिया, जिन भोगा सो अंत पछताना, परिणाम जो उनके सामने आएगा उसमें पछताना पड़ेगा, खुशी नहीं मिलेगी, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तेरी भी, तेरे परिवार की भी, तेरे देश की भी। तो इसीलिए जो महाजी ने ये सेंटेंस संतावास में लिखा है, जिसका प्रेमी ने जिक्र किया, इसका डिटेल्स ये है कि समता के बगैर जो नीति होती है वो नाश का कारण बनती है। इसीलिए अपने जीवन को समता के आधार पर बनाएं, अर्थात ईश्वर प्राप्ति के लिए जिए। अंतर्यामी ईश्वर है, वो आनंद रूप है, उसको आनंद का सागर कहा जाता है, और उसकी पहचान महाजी की समाधि को देखकर होती है। प्रेमी गोले में बैठे हुए हैं, महाजी समाधि में लीन है, आधा घंटे बाद समाधि टूटती है, तब कहते हैं प्रेमी कोई प्रश्न करो, तो आंखों से ऐसा लगता है जैसे गहरे नशे से ये बाहर आए हो। तो कितना आनंद है वहां पर, देखने में शरीर पिंजड़ है उनका, तो बताइए मुझे कि जो गुरु है वो आनंद आपको देना चाह रहा है, लेकिन दे कैसे, वो उसकी बात मानो तब देगा ना वो। उसके लिए आपको गुरु के अनुसार पांच नियम पर चलना पड़ेगा, तब उस आनंद को प्राप्त करने की पात्रता आपकी तैयार होगी। जब पात्रता तैयार हो जाएगी और गुरु के सिमरन को आप करोगे, संसार में संयम बरतोगे गुरु के मार्गदर्शन अनुसार, तब अंदर गुरु कृपा करता है, फिर वो आनंद आपके अंदर प्रकट होता है, आपके अनुभव में आता है, फिर तो आप आगे खुद ही चलने लगते हो, आपको पता लग जाता है जो गुरु ने कहा है सब सत्य है, सब ठीक है, फिर उत्साह खुद ही आ जाता है, आदमी चल पाता है, लेकिन पहले गुरु विश्वास करके चलता है। इसीलिए प्रारंभ में गुरु प्रायणता लाजमी है, बिना उसके इंसान चल नहीं सकता। सारे शास्त्रों का ज्ञान भी हो जाए तब भी चल नहीं पाता वो, क्योंकि उसका समर्पण कहीं नहीं है, अपनी बुद्धि का अहंकार बना रहता है उसके अंदर। इसलिए बुद्धि जब तक गुरु के आगे समर्पित नहीं होती, गुरु ब्रह्म ही है, उसे हटके कुछ ही नहीं है वो, लेकिन आपके लिए वो एक इंडिविजुअल बीइंग है, क्योंकि आप ईश्वर पर प्रेम कैसे करोगे, ईश्वर तो आज देखा ही नहीं आपने, गुरु से प्रेम कर सकते, गुरु की याद भी कर सकते। गुरु शरीर रूप में मौजूद नहीं है, फिर भी गुरु जब कह रहा है कि सतगुरु तो अंतर रमे पल पल करे पुकार, तू आज्ञाकारी होए के घटका पाठ उघाड़, तो आपको याद आ जाती है गुरु ने कहा मैं उसकी आज्ञा पालन करूंगा, वो कह रहा है मैं अंदर ही हूं, मेरी सहायता करेगा, मेरी सुनेगा वो, और सुनता है। तो जिसके अंदर गुरु परायणता होती है, ईश्वर ही गुरु है, गुरु और गुरुशिष्य में कोई भेद नहीं है। महाराज जी लिखकर दे रहे हैं समदावलास में, वास्तव में गुरु शब्द रूप परमेश्वर है जो घट घट व्यापक है, इसलिए गुरु ईश्वर में भेद कोई नहीं है। लेकिन गुरु के प्रति मेरी श्रद्धा बन सकती है क्योंकि उसकी लीला किताबों में लिखी हुई है, उसका ज्ञान किताबों में लिखा हुआ है, जिसको हम शास्त्र कहते हैं, जिसको वाणी कहते हैं। तो वहां से एक इंडिविजुअल ईश्वर के प्रति विश्वास आता है जिसको हम गुरु कह देते हैं, वो देह रूप में ईश्वर प्रकट हुआ है, इसलिए मेरा उससे संबंध बन सकता है, क्योंकि मुझको देह का अहंकार है, इसको मैं डिनाई नहीं कर सकता। जब तक मेरे अंदर देह का अहंकार है, देह के प्रति आसक्ति है, तब तक गुरु के शरीर को मैं भूल नहीं पाऊंगा, उसके जीवन को भी नहीं भूल पाऊंगा। यद्यपि है वो ईश्वर, और वो निराकार सत्ता मेरी देह में मौजूद है, मेरे जीवन को चला रही है, लेकिन फिर भी मेरा उससे कोई संबंध नहीं। तो गुरु के द्वारा तेरा संबंध ईश्वर से स्थापित हो जाता है, और वो अंतर्यामी ईश्वर तेरे अनुभव में आ जाता है, उसका आनंद का स्वाद तू लेता है, तब जाकर तेरे अंदर पूर्ण भरोसा आता है गुरु की नीति का, समता नीति का, कि गुरु ने यह बात क्यों कही है कि समता नीति के बगैर ये सारा का सारा जीवन जो है, ये चाहे वो देश हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो परिवार हो, उसने बर्बाद होना ही है, उसने दुखी होना ही। इसलिए अपनी नीति जो बनाए वो ईश्वर पर आधारित बनाए, समता पर आधारित बनाए, गुरु पर आधारित बनाए, तब ये जीवन सफल होगा। ओम धम सत्यम सर्वदा।